நமோரியந்தானம் நமோ சித்தானம் நமோ ஆயரியானம் நமோ உவஜாயணம் நமோ லோயே சவோத்ராயவர்த்தி சாமுணம் நம சமாய சாராய சானுபூத்தியா சகாசத்தே சித் சபாவாய பாவாய சர்வபாவாந்தரசிதே அனந்த தர்மணஸ்தத்வம் பஷ்யந்தி பிரத்யகாத்மன அநேகாந்த மயி மூர்த்தி நித்யமேவ பிரகாசதாம். ये पूज्य मैत्री की तत्व चर्चा सहानुभूति दर्शन है, उसमें अभी अपन 342 नंबर का बोल देंगे। उसमें प्रश्न है, कहेवामां आवे छे के तू ज्ञान लक्षण ने शोधी काढ़े, पण अमारी पासे तो वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान ज छे, तो केवी रीते शोधू? अभी जीव को लक्ष्य एवं अपना जो परम भगवान आत्मा है उसका तो ज्ञान नहीं है, मगर वो कभी कैसे ज्ञान होता है कि वो लक्षण के द्वारा लक्षित होता है, और लक्षण और लक्ष्य तन्मय और तादात्म्य है, तो पहले तू लक्षण को जान, ऐसी बात चलती है। मगर वो लक्षण कैसे मालूम पड़े, वो कैसे जानने में आवे? जो लक्षण है तो हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है, तो लक्षण और लक्ष्य तादात्म्य है, और आत्मद्रव्य जो है वो इंद्रिय ज्ञान का तो विषय है नहीं। अलिंग ग्रहण के बोल में सबसे पहले बोल में लिया है कि वो लिंग से ग्रहण नहीं होता है, माने इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है, मगर वो अतिंद्रिय ज्ञान का विषय है। तो अभी अपने पास अतिंद्रिय ज्ञान तो है नहीं, और इंद्रिय ज्ञान है तो इंद्रिय ज्ञान का तो विषय आत्मा नहीं है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों अतिंद्रिय ज्ञान का वास्तव में विषय है। जब भी लक्ष्य ख्याल में आता है, अनुभव में आता है, जानने में आता है, तभी वास्तविकपणे लक्षण जानने में आता है। और लक्षण और लक्षण पहले ख्याल में आता है, थोड़ा अनुमान से ख्याल में आता है, मगर वो लक्षण और लक्ष्य का ताजात्मापना जब होता है तभी वो वास्तव में लक्षण और लक्ष्य दोनों का ख्याल आता है। और किसमें आता है? ये अतीन्द्रिय ज्ञान में आता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, अभी हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, तो वो लक्षण और लक्ष्य दोनों को कैसे जानना, ऐसा प्रश्न है। रजनी भाई पूछते हैं कि किसी का प्रश्न नहीं आता है, ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, जिज्ञासु का प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न किसको नहीं होता है? या तो कुछ समझ में नहीं आता है उसका प्रश्न नहीं होता है, कि इधर क्या चलते हैं, गुरुदेव क्या बताते हैं, वो किसी को समझ में ही नहीं आता है तो किसी को प्रश्न नहीं होता है। या तो ऐसे जीव को प्रश्न नहीं होता है कि जिसको सब समझ में आ गया उसको प्रश्न नहीं होता है, बाकी तो हरेक जीव को ऐसा प्रश्न होना ही चाहिए। मेरे को भी हुआ था, जब मैं ये सब समझने के लिए तैयार हुआ था, ये अभ्यास करता था, तो ये प्रश्न मेरे को भी हुआ था कि अभी अपने पास तो इंद्रिय ज्ञान है, अतिंद्रिय ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ है, वो तो आत्मा तो अतिंद्रिय ज्ञान का विषय है, तो वो कैसे जानने में आया? तो इस प्रकार का यदि प्रश्न है तो उसका जवाब दे रहे हैं कि दृष्टि इन्हें अंतर्मा रूपी पड़े, दृष्टि उसको अंतर में देनी पड़ती है। अभी दृष्टि तुम्हारी बाहर की बाहर है, इसलिए तुमको ये लक्षण और लक्षण क्या है और उसका लक्ष्य क्या है वो दोनों का पता नहीं चलता है, और तुमको ऐसा भासता होता है कि मेरे पास इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान है मगर वो दृष्टि को अंतर में मुके बिना, रखे बिना उसको कुछ पता नहीं चलता है। आगे कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान भले हो पण पोते छे ने, पोते जे भगवान आत्मा जो है वो अतिंद्रिय महापदार्थ है, और उसमें से उसका चैतन्य अनुविधाय परिणाम उपयोग प्रकट हो रहा है। तो चैतन्य की जातना, चैतन्य की जात का एक परिणमन प्रकट हो रहा है, तभी इंद्रिय ज्ञान है, उसी समय में एक चैतन्य अनुविधाय परिणाम प्रकट हो रहा है। पोतानो कई नाश थयो नथी, ने इंद्रिय ज्ञान कई अंदर प्रवेशी गयो नथी, पोते मान्यता करी छे પણ પોતાના જ્ઞાનમાં પરદ્રવ્ય પ્રવેશી નથી ગયું ને પોતાનું અસ્તિત્વ કાંઈ નાશ નથી થયું, માટે તારી પરિણતિને અંતરમાં વાળીને તું પોતે કોણ છે તે શોધી લે ગોતિકાળ। અભી ઇધર યે જો વેદનાન કા અપના જો શિબિર ચલ રહા હૈ ઉસમે પરદ્રવ્ય સે ભિન્ન હૈ વો તો સબસે પહેલે નક્કી કરને કી બાત હૈ, વો નક્કી કરને કે બાદ મે જો ઉસકે લક્ષ્ય સે હોને વાલે જો રાગાદી ભાવ હૈ વો ભી ભિન્ન હૈ, વો તો સબ બાત ઇધર ચલતી હી રહેતી હૈ। गुरुदेव जो बता रहे हैं कि ज्ञान उपयोग में उपयोग है,
और उपयोग में क्रोधादि नहीं है। तो रागादि भाव है वो तो भिन्न है, वो बात जो समझ ले गए तो उसके बाद का ये प्रश्न है। अभी क्या रह गया कि अपना ज्ञान ज्ञान स्वभाव रह गया। तो ज्ञान स्वभाव में क्या है कि ज्ञान अपने स्वभाव में ध्रुवपण कायम टिके रह के उसका ज्ञान रूप का परिणाम चलता रहे है। वो ज्ञान कैसा है कि ज्ञान एक से चार आत्मा पड़े उठ रहा है, इसलिए उसमें भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उपयोग में उपयोग है, इस प्रकार की स्थिति है। मगर वो जीव को उसका ख्याल नहीं आता है, वो जिसका ज्ञान नहीं होता है उसका अनुभव नहीं होता है और इंद्रिय ज्ञान है ऐसा उसको लगता है। अभी राग मेरे से भिन्न है उसके आगे की बात है। राग जो है वो अपने से भिन्न है, शरीर तो भिन्न है ही, मगर उसके लक्ष्य से होने वाला जो राग है वो परिणाम भी विकारी परिणाम है। कर्म के संबंध से होने वाला होने के कारण में वो उसमें कर्म ही व्यापक है, कर्म ही कर्म का ही परिणाम है, वो जात उसकी कजात है। इस प्रकार से दो की स्वभाव और रूपाव की दो की भिन्नता करके अभी जो अपना ज्ञान स्वभाव ज्ञान द्रव्य ध्रुव और उसका ज्ञान परिणाम ये दो के विचार में आ गया है। तो ये जो अभी अपना जो ज्ञान है वो कैसा है, इंद्रिय ज्ञान है ऐसा उसको लगता है। तो उसको समझा रहे हैं, ऐसा प्रश्न है कि अभी अपने पास इंद्रिय ज्ञान है तो वो अंदर में जाके लक्षण के द्वारा वो आत्मद्रव्य कैसे लक्षित हो सकता है। तो जो अंदर में से जो ज्ञान आता है वो अंदर में कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अंदर में अपना अतिद्रिय मास पदार्थ अपना सर्वज्ञ स्वभाव है और उसकी कारण सूत्र परिवर्त रही है हरेक समय में पूजित पंचम भाव की परिणति। उसमें से एक ध्रुव प्रवाह जो वर्त रहा है उसमें से एक ज्ञान की किरण प्रकट होती है। वो कैसी प्रकट होती है कि चैतन्य की जाति चैतन्य के जात की परिणमन जो प्रकट हो रहा है वो अंदर में कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है। अंदर में तो अतिद्रिय महापदार्थ अपना रहा हुआ है तो उसमें से जो ज्ञान की परिणाम प्रकट हो रहा है वो चैतन्य की जात का परिणाम है, वो चैतन्य की जात है। उसमें जात चैतन्य की है। राग में तो चैतन्य की जात नहीं, वो तो कजात है, मगर जो ज्ञान का परिणाम है वो चैतन्य की जात का है। तो चैतन्य की जात जो है वो अंदर में वो सर्वज्ञ स्वभाव है, तो वो सर्वज्ञपना उसमें वर्त रहा है। उसमें एकांत एक ज्ञेय को जान के अटकना वो उसका स्वभाव नहीं है। ऐसा अंदर में कोई स्वभाव नहीं है कि एक ज्ञेय को जान के उसमें अटकना। अभी इंद्रिय ज्ञान क्या है वो अपन सोच करें। इंद्रिय ज्ञान माने क्या, इंद्रिय ज्ञान माने वो जो ज्ञान का स्वभाव जो अंदर में से प्रकट हो रहा है, ज्ञान की परिणाम जो प्रकट हो रहा है कि जो स्वर प्रकाशक है स्व उसके में तन्मय होके स्व अपना आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है और परद्रव्य भी जितनी उसके अक्षोक्ष में उतना उसको जानने में आ रहा है। अभी वर्तमान में जितना आवरण हटा है वो उसको जितना अक्षोक्ष में उतना उसको जानने में आ रहा है। एक इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय संबंधी प्रकाशक बनाए, पंचेंद्रिय हो तो पंचेंद्रिय संबंधी प्रकाशक बनाए, ऐसा उतना जानने की उसकी शक्ति अभी प्रकट है। हालांकि उसकी शक्ति तो पूरी है, यदि उस पर्याय को कर्म उपाधि निरपेक्ष तरीके देखो, ऐसी दो प्रकार की नहीं चली है। आला पद्धति में छह प्रकार की जो पर्याय युक्तिक नहीं चली है उसमें दो प्रकार की नहीं है कि एक कर्म उपाधि सापेक्ष शुद्ध पर्याय ठीक नहीं। अभी ये जो कर्म उपाधि सापेक्ष है सूक्ष्म भाव तरीके उसको देखो तो कर्म उपाधि सापेक्ष है, वो आवरण वाली पर्याय है। तो उसमें तो जितना उगाड़ है आवरण जितना हटा है और उगाड़ जितना हुआ है उतना सूक्ष्म जितना ही जानने की उसकी शक्ति अभी प्रकट है। मगर उस कर्म उपाधि से निरपेक्ष उस पर्याय को देखो, जब भी ये पर्याय इस प्रकार से वर्त रही है उस काल में कर्म उपाधि निरपेक्ष करके देखो तो वो कहती है कि समान ये उधर शब्द लिखे हुए कि अभी कर्म उपाधि निरपेक्ष तरीके उस पर्याय को देखो, कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्याय सीखने से वो इसका ज्ञान कैसा है किसी समान है। इस प्रकार से शक्ति तो अपने पास पूरी है, किसकी शक्ति, द्रव्य की और गुण की शक्ति नहीं पर्याय की शक्ति। तो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि पर्याय का भी किधर है केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान नहीं है प्रकट। और किसी को ऐसा लगे कि ये तो निश्चय बात का बात है या श्वेतांबर की बात है, श्वेतांबर पक्ष ऐसा मानता है कि ज्ञान है वो सत्ता में पड़ा हुआ है उसके ऊपर आवरण है, नहीं ये सत्ता की बात नहीं है ये शक्ति की बात है। किसकी शक्ति, पर्याय शक्ति। पर्याय शक्ति जो प्रकट है तो पर्याय शक्ति जो प्रकट है तो उस प्रकार से उस शक्ति को यदि देखो तो उतना उसकी शक्ति कैसी है कि केवल ज्ञान जैसी। मगर अभी क्या है कि अभी वो आवरण से अपन ने खुद ने आवरण वो उसको कर दिया है। द्रव्यावरण जो है, कर्म का आवरण है, ज्ञान आवरण है, वो तो निमित्त रूप से है, मगर अपने खुद ने ही वो आवरण प्रकट कर दिया है। वो आवरण क्या है कि ये जो अखंड स्वभाव प्रकाशक अपना अपना स्वभाव है, कि जो मैं से तादाद में होकर गया को अनुभव करता है, सर्वज्ञ स्वभाव को वो अनुभव कर रहा है और उसमें सर्वज्ञ पना प्रकट है, उस स्वभाव को तिरोभाव करके, उस स्वभाव को पूर्णपणे आविर्भाव न करके, वो ज्ञेय की सन्मुख करके, वो ज्ञेय आकार की सन्मुख, ज्ञेय के सन्मुख तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो किसी को जानने में आ रही नहीं रहा है, उस संबंधी ज्ञान आज जानने में आ रहा है, उस संबंधी ज्ञेय के आकार जो उधर पड़ते हैं, उसको सन्मुख होके उसकी उसमें अटक के उसको जानने में जाता है, तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है। वो ज्ञान खंड खंड है। किसी को ऐसा प्रश्न आता है कि इंद्रिय ज्ञान जैसा कुछ है ही नहीं, कि ज्ञान तो ज्ञान रूपी है, मगर इंद्रिय के माध्यम से उसको जाना तो इसको इंद्रिय ज्ञान कह देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना जो ज्ञान है वो भी इंद्रिय ज्ञान रूप हो जाता है, वो ज्ञान खंड खंड हो जाता है। ज्ञान का जो अखंड बने जानना का स्वभाव है, उस स्वभाव से अच्युत होके वो ज्ञान का इंद्रिय ज्ञान कर देता है, वो ज्ञान जो है उसका इंद्रिय ज्ञान कर देता है, तो ज्ञान खंड खंड हो जाता है। उसको भावेंद्री भी कहते हैं, उसको खंड खंड ज्ञान भी कहते हैं, उसको इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान का क्या स्वभाव है कि एक ज्ञेय में अटक के, एक ज्ञेयाकार में अटक के उसको ही जानने की, उसकी सन्मुख होकर जानने को जो जाता है वो इंद्रिय ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान है, वो ज्ञान का आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विकार है। वो पुद्गल के संबंध से, ज्ञेय के संबंध से होने वाला वो ज्ञेय के विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव, वो ज्ञेय का परिणाम है वास्तव में, वो आत्मा का परिणाम नहीं है। आत्मा का परिणाम कैसा हुआ कि आत्मा अखंड स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक सर्वज्ञ स्वभाव अखंड है, तो उसका उपयोग जो है वो अखंड स्वपर प्रकाशक पना जिसमें हो और जिस वो जिस ज्ञाय को ही प्रसिद्ध करता है, वो अपना अखंड ज्ञान स्वभाव जो है वो आत्मा का परिणाम है, वो आत्मा का स्वभाव है। मगर इस प्रकार से एक ज्ञेय के पर प्रकाशक पने के, एक ज्ञेय में जान के उसको अटक के जो जानना, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो खंड खंड ज्ञान है। वो एक एक ज्ञेय के क्रम क्रम से जानना होता है, ज्ञेय से ज्ञेय अंतर होता है। एक ज्ञेय को जानना, फिर दूसरे ज्ञेय को जानने के लिए दूसरे ज्ञेय को पलटना पड़ेगा, उसकी सन्मुख होना पड़ेगा, फिर तीसरे ज्ञेय के सन्मुख होना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो परिणाम है उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। जो इंद्रिय ज्ञान जो बोला जाता है वो खरेखर वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान का स्वभाव जो है वो ही वास्तव में ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान है वो खरेखर ज्ञेय के परिणाम है, ज्ञेय में लुप्त होके, ज्ञेय में एकाकार होके जो ज्ञेय को जानने को जाता है वो वास्तव में ज्ञेय के परिणाम ही है। उसको इंद्रिय ही कह दिया है, इंद्रिय ही है, वो ज्ञेय ही है, और उससे अंदर में भगवान आत्मा वो भिन्न है, ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा उससे भिन्न है। जैसे अभी ये चेतन भाई नली बाणु प्राण गाथा में वो उसमें इस प्रकार से, जैसे शीत उष्ण की अवस्था माने नौकर जितने भी है वो जैसे भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाले जो अपने ज्ञान परिणाम है, उसके निमित्त से जो होने वाली अपने ज्ञान अवस्था है माने सामान्य उपयोग, अभी अपने पास जो है अज्ञानी की बात है, वो आत्मा से अभिन्न है, इस प्रकार की बात। वैसे ही राजद्वेष के जो परिणाम है वो भी पुद्गल के से अभिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो आत्मा से अभिन्न है। इस प्रकार से दुख के बीच में वेदना करके अपने आत्मा को यदि वो जान ले तो ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार की बात जो बाणु प्राणु गाथा में आचार्य भगवान ने ली है, उसके उसमें भी अपन थोड़ा आगे बढ़ाए इसको, उस बात को, यदि जैसे श्रीकृष्ण की अवस्था भिन्न है, पुद्गल की अवस्था है, और ज्ञान आत्मा की अवस्था है, आत्मा से भिन्न है, ऐसे राजद्वेष की अवस्था है वो भी पुद्गल की अवस्था है, और ज्ञान जो है वो आत्मा की अवस्था है, वो आत्मा से भिन्न है। ऐसे ही ये जो अभी इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो ज्ञेय की अवस्था है। जिस ज्ञेय में लुप्त होके जो इंद्रिय ज्ञान में उस को ही जानने में अटक जाता है, वो वास्तव में इंद्रिय ही है या ज्ञेय ही है, उससे अपना ज्ञान स्वभाव जो है, ज्ञान का परिणाम जो प्रकट हो रहा है, ज्ञान की अवस्था जो प्रकट हो रही है, वो आत्मा से अभिन्न है। चैतन्य अनुग्रह परिणाम जो अखंड स्व पर प्रकाशक पदा है वो आत्मा से अभिन्न है, और इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञेय से अभिन्न है। इस प्रकार से दो के बीच में भेद करना चाहिए। जो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञेय से अभिन्न है, और ज्ञान जो अंदर से प्रकट होता है वो आत्मा से अभिन्न है। इस प्रकार से दो के बीच में जब तक वो भेदना नहीं करता है तब तक वो अज्ञानी है। और जब वो दो के बीच में भेदन जब कर लेता है वो उसको पता चल जाता है कि मेरा स्वभाव तो अखंड बने स्वभाव प्रकाश बना है, तब वो ज्ञानी हो जाते हैं। तो इसमें एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि ये चीज उष्ण की अवस्था और राजा जी की अवस्था है वो तो अपने से भी नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय से वो अलग पर्याय है, पृथक पर्याय है। हमारी ये तो ज्ञानी उस प्रकार से पढ़ रहा है तो उससे कैसे भिन्नता करे, तो उसमें कैसी भिन्नता है, किस प्रकार की भिन्नता है? ये ज्ञान की पर्याय तो भिन्न है और राग की पर्याय तो भिन्न है, उपयोग में उपयोग है और उपयोग में क्रोधा जी नहीं है। इस प्रकार से दो की पर्याय तो भिन्न भिन्न ही है, स्वभाव और विभाव दो प्रकार की भिन्नता है, मगर जो ज्ञान है वो तो अभी इंद्रिय ज्ञान रूप पर अभी परिणम रहा है, उस रूप हो गया है। तो अंदर में जो अंदर में से जो ज्ञान आता है वो अखंड ज्ञान प्रकट होता है और उसी समय में वो इंद्रिय ज्ञान खड़ा इंद्रिय ज्ञान कर देता है, जिनसे ज्ञान और राग भीन होने पर भी मैं रागी हूं इस प्रकार का उसके साथ में एक पनाकर ज्ञान करता है तो ज्ञान का अज्ञान तो कर देता है। इस प्रकार के शब्द जो आचार्य भगवान ने लिखे ज्ञान का अज्ञान कर देता है, और दूसरे समय यदि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ राग मेरे में नहीं है, इस प्रकार का लोक के बीच में वेदनान करके अपने आत्मा को अनुभव कर देता है तो ज्ञान का ज्ञान प्रकट कर देता है। ऐसे मार्मिक शब्द लिखे, ज्ञानी जीव को है ऐसा नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है मगर राग जो है वो मेरे से पृथक है, इस प्रकार से नहीं जान के मैं रागी हो गया हूँ इस प्रकार का उसके साथ में एकत्व तो बुद्धि रूप से परिणाम होता है तो ज्ञान का अज्ञान कर देता है। और दूसरे समय में मैं तो ज्ञानवान हूँ राग मेरे में नहीं है, इस प्रकार से ज्ञान में ही स्थित रहकर अपने आत्मा को यदि जान लेवे तो वो ज्ञान का ज्ञान तो प्रकट कर देता है, ज्ञान का अज्ञान तो अज्ञानी जीव है ऐसा नहीं है। हाँ, वो बहुत मार्मिक शब्द है, वो समझने जैसा है कि ज्ञान का ज्ञान तो करता है और ज्ञान का ज्ञान तो करता है। ज्ञानी जीव क्या करता है कि ज्ञान तो है, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है। दो गाथा में भी यही चीज करना चाहता है कि आत्मा ज्ञान रूप से ही परिणम रहा है, ऐसा परिणम नहीं करके मैं उद्गल द्रव्य के प्रदेश में स्थित हूँ, इस प्रकार से जो अपने आत्मा द्रव्य को उस रूप अनुभव कर लेता है वो पर समय है और मैं चैतन्य ध्यान दर्शन चरित्र अपने स्वभाव में स्थित हूँ, इस प्रकार से जो जान लेता है वो स्व समय रूप परिणम जाता है। ये दोनों अवस्था ऐसे थे, मगर सामान्य पड़े तो जानना 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 ऐसा स्वभाव हरेक जीव के पास में प्रकट है। इस प्रकार से अपने स्वभाव को जान ले तो उसको स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह इसमें भी जब वो अंदर से ज्ञान आता है तो अतिंद्रिय महापदार्थ से आने वाला ज्ञान उसकी जाति का वो सामान्य पड़े सामान्य उपयोग है, वो जानने का चैतन्य के अनुविदाई परिणाम है। उसका क्या स्वभाव है कि वो आत्मा से तन्मय होकर आत्मा को ही प्रसिद्ध करता है, इसलिए उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। 17 में इसे लिखते है कि अनुभूति स्वरूप और भगवान आत्मा अनुभव में आते होने पर भी माने वो जानने में आते होने पर भी वो अज्ञानी इसको नहीं जानता है, तो किस ज्ञान में जानने में आता है और किस ज्ञान में जानने में नहीं आता है तो उसका समाधान कैसे करे? वो पर्याय एक ही होती है, ज्ञान की पर्याय जैसे राग की पर्याय भी है और ज्ञान की पर्याय भी है, इस प्रकार से ये ज्ञान की पर्याय नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय ही खुद ही इंद्रिय ज्ञान रूप होती है, अंदर से आती है तो क्या आती है, प्रथम क्या आती है ज्ञान रूप से आती है, फिर बाद में अज्ञान रूप करती है। इससे इसमें क्या होता है, अंदर से आती है तो क्या होती है, ज्ञान आती है फिर बाद में उसको इंद्रिय ज्ञान कर देता है। ये बात की बात जो करते हैं वो काल की अपेक्षा से नहीं, पहले समय में ज्ञान आता है और दूसरे समय में ये अज्ञान या इंद्रिय ज्ञान कर देता है, ऐसा नहीं, वो भाव का भेद है। भाव के भेद से अंदर में से मेरा ज्ञान प्रकट होता है, इस प्रकार से उसको यदि देख ले और ये इंद्रिय ज्ञान जो प्रकट हो रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से जो मेरी परिणति चल रही है मेरा परिणाम चल रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मैं नहीं हूं, इस प्रकार का विकास जब विद्यमान है इंद्रिय ज्ञान जब है तभी वो इंद्रिय ज्ञान तरीके नहीं देख के अपने ज्ञान के स्वभाव को देखे, पर्याय के ज्ञान के स्वभाव को, पर्याय के स्वभाव को देखे तो पर्याय कैसी है अखंड बड़े स्वभाव प्रकाशक है और गायक को तादात्म्य रखे गायक को ही जानती रहती है, तन्मय पड़े उसका अनुभव करती है, इस प्रकार का ज्ञान का स्वभाव है वो आत्मा से भी है और जो इंद्रिय ज्ञान है वो गेंद से अपने इस प्रकार से दो के में भेदन करना चाहिए। इसमें ऐसा है जो वो अपना स्वभाव है, जैसे कल अपन बात हुई थी उनके अवचार में कि सकल विषय के विशेषों में उपयोग का क्या स्वभाव है, कि सकल विषय के विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम उसका स्वभाव है, स्वभाव है अनाधिन ऐसा कौन सा चंपोत्न चेतन भी मतनात्मा है कि जिसको जानना चाहिए, ऐसा ऊपर में प्रश्न है मथा है। तो उसमें उसकी स्पष्टता करते हुए लिखते हैं कि सकल विषय के विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम उसका स्वभाव है, अनाधिन स्वभाव है, इस प्रकार का अपना स्वभाव है, ऐसा अपना जानने वाले ऐसा अपना स्वभाव को जान ले और एक एक रस परिणाम के पूर्वक उसको वो जानने को नहीं जाता है, इसलिए आत्मा और अर्थ है और शब्द है और रूप है, इस प्रकार से जो समझाया तो अपना ज्ञान का स्वभाव कैसा है, उपयोग का स्वभाव कैसा है, अंदर में से जो ज्ञान आता है वो कैसा है, कि सकल विशेष के विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम उसका स्वभाव है और वो जो इंद्रिय ज्ञान खड़ा कर देता है अपने अज्ञान से वो मेरा स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान और अपना ज्ञान स्वभाव दो के बीच में भेदनान करना चाहिए। यदि ऐसा भेदनान करेगा ये मेरा स्वभाव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भले हो जैसे राग के परिणाम हो उसी समय में राग से भीन हूँ, इस प्रकार से अपने आत्मा को जान लेना है, उसी प्रकार से जब ये इंद्रिय ज्ञान है उसी काल में मैं तो अतिंद्रिय ज्ञान स्वभाव महापदार्थ भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार से और मेरे ज्ञान ऐसा प्रकट होता है कि उसमें मेरा भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, इस प्रकार से दो के बीच में वेदना करे तो इंद्रिय ज्ञान से वेदना होके अपना अतिंद्रिय महापदार्थ उसको प्राप्ति हो सकती है, इस प्रकार से उसको अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। जो ज्ञान रूप का परिणाम था इंद्रिय ज्ञान जो ज्ञान सामान्य रूप का परिणाम था वो विशेष रूप से सुदुपयोग रूप से परिणाम करके अतिंद्रिय ज्ञान रूप से परिणाम करके वो अपने आत्मा को अनुभव कर लेता है, इस प्रकार की बात इधर कर लेते हैं। तुम्हारी माटे तारी परिणति ने अंतरवाड़ी ने तू पोते कौन छो ते गोतिका वच्चे भान अने इंद्रिय आवे छे तेने गौण करी दे अने तारा ज्ञान ने मुख्य करी दे तू ज्ञान लक्षण थी आखा नायक ने ओळखी दे वच्चे आता है माने तेरी अभी दशा ऐसी है कि तेरे को पूर्णपणे अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, केवल ज्ञान जैसा ज्ञान अतिंद्रिय प्रकट अभी नहीं हो रहा है, मगर तेरे पास इंद्रिय ज्ञान की विद्यमान है, ज्ञानी जानते वो सभी कहते हैं कि वचमा इंद्रिय ज्ञान मन अने इंद्रिय आवे छे एम तने थाय छे अने तारा ज्ञान लक्ष आखा ज्ञायक ने ओळखी ले मन अने इंद्रिय आवे छे एने कोण करी नाखे, मन और इंद्रिय द्वारा जो जानने की क्रिया होती है वो इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है, ज्ञान का इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो जाता है, उसको अभी तू गौण कर दे और अपने जो ज्ञान स्वभाव है उसके ऊपर देख और उस लक्षण से उस आत्मा को ग्रहण कर ले। तू इंद्रिय ने साथे राखे छे एटले इंद्रिय थी जणायु आना थी जणायु एम तने थाय छे, इंद्रिय को साथ में रखे ये मेरा स्वभाव ही है, ये सबको एक प्रकार से जानना ये चक्षु के द्वारा वो उसे रूप को देखना, ये कर्ण के द्वारा आपने ये शब्द को सुनना, वो जीभ के द्वारा स्वाद चखना, ऐसा मेरा ज्ञान का स्वभाव है, इस प्रकार से तूने वो ज्ञान के स्वभाव को इंद्रिय के माध्यम से या मन के माध्यम से ही जानने का तेरा उसको स्वभाव तूने मान रखा है, ऐसी तू तेरे को श्रद्धा हो गई है, इसलिए तेरे पास इंद्रिय ज्ञान चल रहा है, अभी तू ऐसा सिद्धांत कर कि मैं तो अतिंद्रिय महापदार्थ हूँ और मेरे ज्ञान जो है वो मेरे ज्ञायक में से आ रहा है, उसमें मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, वो अनुभव में आ रहा है, इस प्रकार से वो ज्ञान और ज्ञायक समय और चालक में है, इस प्रकार से आत्मद्रव्य का सिद्धांत कर तो तेरे को इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से पर को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
इस प्रकार का विचार तो मन अनिंद्रिय के द्वारा होगा।
अभी पहले ये जब निर्णय तक जब तक चलता है तब मन द्वारा ही निर्णय चलता है, पहले जो ऐसा भ्रम था कि ये मैं इंद्रिय द्वारा ही जानता हूँ उसका निषेध करना और मेरा ज्ञान का स्वभाव है वो कैसा है वो पहले तो मन के द्वारा ही जैसा स्वभाव है ऐसा में उसको आता है, फिर जैसा स्वभाव है ऐसा भासने लगे अपने को, उसकी प्रैक्टिस करते 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 जैसा स्वभाव है ऐसा भासने लगे तब वो मन विश्राम को पा जाता है, इसलिए मन विश्राम को पाकि अतिंद्रिय ज्ञान जन्म से प्रकट होकर अपने आत्मा को अनुभव कर लेता है, अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान की
बुद्धि है, ये बालक का जन्म हुआ जब तक वो घर में था तब तक ठीक था, मगर बाद में आया तो अचक्षु से ऐसा ऐसा देखने लगता है। वो चक्षु ही मेरी माध्यम है, देखने का जो साधन है वो मेरा चक्षु ही है। इस प्रकार से वो ऐसा संस्कार लेके आता है, वो अनादि का संस्कार है, उसको उसको किसी ने दिखाई नहीं है कि तू चक्षु से माध्यम से इस वो देख, वो जीभ के माध्यम से स्वाद को वो ऐसा ऐसा करने लगता है जीभ द्वारा कि मेरे को कुछ सभी खाने का दिए, वो मेरे को देखने को दिए। तो इंद्रिय के माध्यम से तू बीच में इंद्रिय रखता है, आना थी जलायु तू एम आखा नायक ने ओछी तू इंद्रिय ने साथे रखे इंद्रिय थी जलायु आना थी जनाव एम तने थाय छे, पण तने तारा ज्ञान थी जनाय छे। वो तो ऐसी श्रद्धा उसमें प्रकट कर कि मेरा जानने का स्वभाव तो मेरा ज्ञान का है, वो अंदर में से ज्ञान आता है। वो सब बाहर का जानना हो तो भी वो अंदर में देखना पड़ेगा, वास्तविक पणे बाहर का जानना भी इस प्रकार से जो होता है वो ज्ञान सच्चा नहीं है। इस प्रकार से तेरे को पर का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता है, गाय का ज्ञान तो नहीं होता है, मगर पर का ज्ञान भी इस प्रकार से तेरे को सच्चा नहीं होगा। वो कैसे सच्चा होगा कि अपने गाय स्वभाव को जानने से जो ज्ञान प्रकट होता उसका स्वभाव ही ऐसा है कि स्वपर प्रकाशित करना है, तो तेरे को अंदर ही देखने का है, अंदर ही देखने का। वो इंद्रिय के माध्यम से पर की सन्मुख होकर पर को देखने का ही नहीं है, वो एकदम स्टॉप कर दे, उस श्रद्धा को छोड़ दे कि ये मेरा माध्यम नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा साधन नहीं है। इस प्रकार से उसको छोड़ के अपने अतीन्द्रिय ज्ञान जो मेरा ज्ञान उपयोग है वो अपने गैर से तन्मय और तागत में और उसमें जानने की शक्ति पूरे की पूरी बनी हुई है। वो इंद्रिय के माध्यम से पर का अवलंबन करके जानने की उसको कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अपने आत्मद्रव्य को यदि जाना और ज्ञान और गैर तन्मय और तागत में है, इस प्रकार से अपने आत्मा की श्रद्धा की तो अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपने जो चलते हैं ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय वो क्या किस प्रकार से कि ज्ञान और ज्ञान तादात्म्य है। इस प्रकार से एक बात तो ऐसी चलती है दृष्टि प्रधान में कि ज्ञान की वजह से मैं परिणाम किया एक बार हूं। इस प्रकार से यदि आत्मा को देखे तो भी अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे प्रकार से कि मेरा जो ज्ञान प्रकट हो रहा है राजा जी से भी ने वो इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, अज्ञान रूप नहीं है, वो उसमें मेरे क्या भगवान आत्मा ही तन्मय और तादात्मा होने से वो ही जानने में आ रहा है और उसमें वो उसका स्वभाव सफल प्रकाश सके। इस प्रकार से उस आत्मद्रव्य को यदि जाने तो उसको ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय कहते हैं। वो ज्ञान वो तेरी दृष्टि उधर लेगा, दृष्टि माने वो दृष्टि का विषय माने वो आश्रय करने योग्य पदार्थ है ऐसा नहीं समझना चाहिए। अभी अभी बात करी थी कई शब्दों की मारामारी नहीं होनी चाहिए, दृष्टि का विषय ऐसा शब्द सुन के वो भड़कना नहीं चाहिए कि इसको भी दृष्टि का विषय परिणामी द्रव्य को दृष्टि का विषय कह दे, ऐसी बात नहीं है। और ये जो शब्द है ज्ञान प्रदान दृष्टि का और दृष्टि प्रदान दृष्टि का विषय वो कुछ गुरुदेव जी ने बताए हुए अपने को वो समझना है। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं दृष्टि प्रधान जो कथन है उसमें दृष्टि का विषय समीप दर्शन बता रहे हैं वो तो अपरिणामी स्त्री शुद्ध ज्ञान भाव क्योंकि दृष्टि एकांतिक है वो पर्याय मात्र से रही द्रव्य को दृष्टि में लेती है। और ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय उसमें क्या ज्यादातर स्पष्टता करते हैं वो अनेक प्रकार से स्पष्टता करते हैं वो ज्ञान कितना चाहिए मगर वो क्या उसमें ज्यादा क्या लेते हैं कि ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व का श्रद्धा वो सम्यक दर्शन वो ज्ञान प्रदान है। ज्ञातृ तत्व माने क्या और ज्ञेय तत्व क्या कि ज्ञातृ तत्व मैंने माने वो द्रव्य गुण पर्यायत्मक अपने आत्मद्रव्य की जिसमें सब जो जानने में आधार है ऐसा अपना ज्ञान रूप से परिणत हुआ अपना ज्ञातृ तत्व उसका और उसमें जानने में आने वाले सब बाह्य पदार्थ वैसी ऐसी बात उपचार से निमित्त से कहते हैं कि बाहर का जैसा जैसा पदार्थ है ये विश्व का जैसा स्वरूप है छह देव का जैसा स्वरूप है उसका भी सज्ञान उसमें आ जाता है मगर वो ज्ञान किसमें होता है कि अपने में ही होता है अपने में ही होता है वो बाहर ऐसे इसी श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है मगर जो ज्ञातृ तत्व है उसमें ही सब ज्ञेय का ज्ञान रहा हुआ है। तो ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व ऐसा दो भेद करके समझाया मगर ऐसा भेद अपना आत्मद्रव्य है उसका सज्ञान करना वो ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय वो ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय और वो अनुभव करने का विषय है वो ज्ञान करने का विषय है वो आश्रय करने की बात नहीं है उसमें वो दृष्टि का विषय दृष्टि प्रदान दृष्टि का विषय उसमें गर्भित रहा हुआ है कि उसके आश्रय से ही इस प्रकार का ज्ञान का अनुभव होता है। जो अनुभव होता है ज्ञान प्रदान जो दृष्टि का विषय प्रकट होता है वो दृष्टि प्रदान दृष्टि के उसके आश्रय से ही होता है। और ये ज्ञान प्रदान जो ज्ञान का से जो प्रकट होता है दृष्टि का विषय प्रकट होता है तो ज्ञान सहज में भी व्यक्त कर लेता है
कि ये जो पर्याय प्रकट हो रही है वो तो क्षणिक है, और अंदर में एक अमीर रूप से रहा हुआ एक अपना ध्रुव अस्तित्व है, तो वो ध्रुव अस्तित्व और उत्पाद अस्तित्व वो दो के बीच में, जैसे अपने पहले बोल में लिया था एक बार कि दो का ऐसा भेद वो ज्ञान जान लेता है, विवेक कर लेता है कि इसकी कोटि कैसी है और उसकी कोटि कैसी है, इस प्रकार का दो का विवेक करके पर्याय है उससे तो ये द्रव्य जो अंदर में विराजमान है वो पसंदी जमीन है, वो भले अभेद पड़े उसको जानने में आता है मगर उसका अभेद पड़ा कैसा है कठिन चीज है, तो उसको उसकी दृष्टि अपरिणामी दृष्टि ज्ञान भाव के ऊपर चली जाती है, तो वो दृष्टि का विषय भी उसको दृष्टि में यथार्थ बनाया जाता है, तो ज्ञान भी सभी को जाता है और दृष्टि भी सभी को जाती है। वो दृष्टि प्रधान दृष्टि के विषय में क्या क्या होता है कि दृष्टि का विषय दृष्टि में लिया कि मैं तो अपरिणामी स्थिति ज्ञान भाव हूँ, मगर वो दृष्टि करने वाली कौन है कि ये ज्ञान की पर्याय है जो सामान्य उपयोग है वो उसको अनुभव कर रहा है, इस प्रकार से वो ज्ञान प्रकट होके वो दृष्टि में ले लेता है तो उसको ज्ञेय का ज्ञान भी हो जाता है, और परिणामी उसकी ज्ञा एक भाव है वो ज्ञेय है और अपने आत्मा को अनुभव कर रहा है, इस प्रकार से अनुभव करने वाली जो अपने उपयोग का लक्षण है यह सदुपयोग है उससे अभी आत्मद्रव्य को जानना वो ज्ञेय है, जैसे ध्येय और ज्ञेय दो रूप वाला अपना आत्मद्रव्य है, ध्येय हो वो दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय है और ये है वो ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय है, इस प्रकार से दो अपना जो सुधरने का विषय है, सुधरने का विषय दो रूप वाला है, सुधरने का जो विषय है उसमें एक में खींच जावे, अभी अभी इसकी बात करती थी ना दृष्टि के विषय में एक में खींच जावे, दृष्टि के विषय में एक में खींच जावे माने दृष्टि प्रधान प्रकार में से में एक मेरे को प्रार्थना प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्रधान प्रकार जो अभी गुरुदेव समझा रहे हैं इस प्रकार की बात वो बहुत जगह लेंगे, गुरुदेव ने ऐसी बात जो कही है वो मेरे पास 50 साल है, ऐसा नहीं है कि वो पीछे में ली है और पहले नहीं ली है, वो पीछे ली है और कभी कभी ली है और वो आगे करने जैसे लिए, इस प्रकार के सब कुतर है उसको नहीं लगाए, मगर जो भी बात गुरुदेव समझा रहे हैं उसको अपना उन्नाट से वो क्या कहना चाहते हैं वो हर एक बात को समझ लेनी चाहिए, ये तो प्रयोजनपूर्ण बात है, ये जो है अभी अभी जो बात कर रहे थे ना कि ये ज्ञान लक्षण तो प्रकट है, जो अपने अपरिणामी नीति ज्ञान भाव है वो तो अव्यक्त है अप्रकट है, और ये तो आगे की सुगम विधि है कि जो सब जब ये जानने में आ रहा है ये सब जानने में आ रहा है उसको इसके सम्मुख होके नहीं, मगर जिसमें जानने में आ रहा है वो कौन है कि क्या है वो किसमें से आता है उस प्रकाश वो उसका क्या संबंध है कि वो आधार है वो आधे है वैसे तन्मय और तादात्म्य संबंध है, इस प्रकार से आत्मद्रव्य को अवेकपण ज्ञान लेना वो ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय इस प्रकार से होता है।
यदि इसको ऐसा समझा जाए कि ज्ञान प्रधान जो दृष्टि का विषय उसको समझ लेने के बाद इसको भी गौण करके
वो गौण हो ही जाता है, ज्ञान प्रधान जब ज्ञान जो ज्ञान करता है ज्ञान को प्रधान ने किया तो ज्ञान का स्वभाव द्रव्य पर यह दोनों को जानना, दृष्टि का स्वभाव है वो एकांत है अपन बात करती है कि वो एकांत के निधि करते हैं तो उसको एक को ग्रहण करती है पर यह को बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकती, मगर ज्ञान का स्वभाव है दो को जानना, तो दो को जानना तो ज्ञान जो है वो भिन्न बने से उस आत्मद्रव्य को ग्रहण करने का प्रयोग करता है क्योंकि उसमें निर्गलता होती है, मगर उसी टाइम में वो ऐसा जानता है ज्ञान स्वयं में विवेक कर लेता है, जैसे भी ज्ञान प्रकट होता है ज्ञान का जब अभ्यास करके जो अपने स्वभाव के सम्मुख जाता है तो ज्ञान है वो तो एक समय की पर्याय है, वो तो क्षणिक भाव है और ये नित्य भाव वो अनंत शक्तिमय है, ज्ञान है वो तो उसका क्षणिक अंश प्रकट है, भले एक ज्ञात होने के कारण से उसको अभेद पड़े वो ग्रहण करने का प्रयोग करके वो आत्मद्रव्य को अनुभव करने का प्रयत्न करता है, फिर भी वो ज्ञान उसका विवेक अंदर में चलता ही रहता है कि ये तो क्षणिक अभिन्नता है, तो क्षणिक भिन्नता भी है वो भिन्नता भी है एक अपेक्षा से उसको एक दे भिन्नता भी है, तो उस प्रकार से वो निर्णय करके वो ज्ञान उसको उपाधि कर देता है ये पर्याय को गौण कर देता है, उसी के साथ में जब अभिन्नपणा का अनुभव करता है उसी काल में ये द्रव्य है वो मुख्य है और पर्याय है ग्रह है, इस प्रकार का दो का विवेक भी ज्ञान में चल रहा है, तो इस प्रकार का विवेक जब चल रहा है तो जिस ज्ञान जिस अपना अपने आत्मविवेक को मुख्यपणे जानता है उसी को दृष्टि ग्रहण कर लेती है और दृष्टि का विषय दृष्टि में आ जाता है, तो उसमें ऐसा करना पड़ता है फिर ऐसा करना पड़ता है ऐसा नहीं है, वो ज्ञान सहज में विवेक कर लेता है जैसा अपना स्वभाव है, पहले अभ्यास में तो सब ले लिया है दृष्टि का विषय क्या है ज्ञान का विषय क्या है किस प्रकार से भिन्न पड़ता है किस प्रकार से भिन्न पड़ा है, फिर प्रयोग में किसी प्रकार से एक में यदि यथार्थपने तुम जाओ वितराग भाव से पक्षापक्षी छोड़ के किसी भी आग्रह छोड़ के अपने एक जैसा अपना ये सब अपना स्वभाव की बात है, ये रूप अपना आत्मद्रव्य है वो भी शुद्ध का विषय है। रागादी भाव की बात नहीं चल रही है, अभी इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं चल रही है, भाई भौतिक ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की बात नहीं चल रही, अपने ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। तो वैसा अपना जो ज्ञान स्वभाव है, तो उसको यदि जिस प्रकार से यदि दृष्टि का जो जो विषय है, क्योंकि दृष्टि दोनों गुण अलग अलग है, दोनों के विषय अलग अलग है, दोनों के स्वभाव अलग अलग है, और दोनों की ग्रहण करने की पद्धति अलग अलग है, तो दोनों को अपने को समझना पड़ेगा। फिर अपने को ये जो जिस प्रकार से इंसूट हो, जैसे अभी चेतन भाई ने सब व्याख्या ली थी, वो सब ज्ञान की प्रधानता से ली थी, दृष्टि के प्रधानता से नहीं ली थी। दृष्टि के प्रधानता की गाथा अभी उन्होंने बताई थी, इसे गाथा का पहले पैराग्राफ है, ज्ञान की गाथा है, इंसूरेंस गाथा है, वो सब वो नियमता की सब गाथा है, अड़तीस गाथा है, पूरे का पूरा शुद्ध भाव अधिकार है वो दृष्टि प्रधान है। तो उसको भी यथार्थ जैसा है ऐसा समझना, और उसका आश्रय और उपाधि नहीं करना, वो इस प्रकार से जो भी ज्ञान की गाथा है वो उसका अनुभव कैसे होता है, वो अनुभव का विषय क्या है, वो रागादी भाव से भिन्न है और अपने ज्ञान से अभिन्न है। इस प्रकार से दृष्टि उस पर ले जाना, दृष्टि उस पर लेना ना, माने उसको मुख्य करना, इससे वेदना करना और दृष्टि में उसको मुख्य करना, वो सुधरने का विषय बनाना, अभेद बना करना, उसमें दो में भेद नहीं, भेद नहीं रखना। दृष्टि का विषय है वो एक पना, वो उन्होंने आदर लिया था कि गुरुदेव ने ऐसा कहा कि दृष्टि नो विषय न करे, जब ज्ञान प्रधान की बात चल रही है तब वो दृष्टि का विषय क्या पक्ष वाला यदि ऐसा कहे कि ऐसा तुम अभेद बना गया तो वो उत्पादन साथ में मिल गया, वो पर्याय साथ में आ गई, तो कैसे दृष्टि का विषय हो जाता है कि दृष्टि का विषय उसके घर में। अभी दृष्टि के विषय को, दृष्टि का विषय तो दृष्टि का विषय ही रहता है, वो मुख्य पढ़ने होता है, वो दृष्टि में आ जाएगा, मगर जब ये जब ज्ञान प्रधान की बात कर रही है तो ज्ञान प्रधान का कैसा स्वरूप है वो भी अच्छी तरह से तुम समझ लो, और इस प्रकार से यदि प्रयोग करोगे तो भी तुमको दृष्टि समय होगी और ज्ञान भी समय होना, दोनों मध्य सोखे विकराल अवस्था के रिश्ते को प्रकट होगी, ऐसी बात बता रही है।
यदि इसको ऐसा समझा जाए कि ज्ञान प्रधान दृष्टि से पहले पूरी वस्तु स्वरूप स्थिति को समझ लेने के बाद ही
समझ लेंगे बात क्या ही सब बात है, दृष्टि का विषय क्या है, दृष्टि का स्वरूप क्या है, दृष्टि किस प्रकार से ग्रहण करती है, ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करता है, वो राग का क्या स्वभाव है, वो परद्रव्य से करने के लिए राग को पसंदी जमीन कहाँ है, उसका क्या स्वरूप है, वो राग का परिणाम भी मेरा ही है, वो सब जानने के बाद में जब अपना ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करने की जो प्रकार जो पद्धति में वो आता है, वो प्रयोग में देता है, और उसमें आत्मद्रव्य को ग्रहण करने का जब प्रयोग करता है, उस काल की बात है। दृष्टि प्रधान ज्ञान प्रधान से यदि मेरे आत्मा जैसे प्रयोजन था कि 200 बार कर दिया कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, और मेरे ज्ञायक भाव का कैसा स्वभाव है कि मेरा परद्रव्य के साथ से कुछ विश्वास का संबंध नहीं है, मगर सहज ये ज्ञायक संबंध है, उस प्रकार से ज्ञायक भाव की बात कर रहे हैं प्रवचन सार की 200 गाथा कि मैं ज्ञायक कैसा हूँ, जो अनादि से इस प्रकार से अवस्थित है, उस ज्ञायक भाव की कैसी बात है कि मैं जो ज्ञायक हूँ उसमें परद्रव्य जाने के अंदर में घुस गए, वो फुड़ाए गए, वो चित्राए गए, वो हटाए गए, वो इस प्रकार से एक क्षण में वो प्रत्यक्ष करता है, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव है। तो कैसे ज्ञायक भाव की बात करें, कितने परियात्मक अपना पूरा कर दे, क्योंकि सब जो जानने में आ रहा है वो किस में जानने में आ रहा है, द्रव्य गुण में तो जानने में नहीं आ रहा है, वो पर्याय में जानने में आ रहा है, इस प्रकार से सब ज्ञेयों को एक समय में प्रत्यक्ष करता है, ऐसे ज्ञायक भाव की बात कर रहे हैं। ऐसा जो ज्ञायक भाव अपना स्वभाव है अनादि से अवस्थित है, वो मोह के द्वारा अन्यथा अवस्थित अध्यवस्थित होता था, वो ज्ञान के द्वारा मोह के द्वारा मोह के कारण से वो ज्ञान रूप और इंद्रिय ज्ञान रूप प्रकट होता था। अभी उस ज्ञाय को मैं जैसा है यथास्थित जैसा है ऐसा मैं प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार से वो आत्मा सामने को कैसे प्राप्त करता है उसकी विधि बता रहे। अभी आत्मा आत्मा को अनुभव करने रूप से कैसे निर्विकल्पणे प्रकट हो जाता है, अनुभव कर लेता है, उसकी विधि बताते हुए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञाय भाव को जैसा है ऐसा मैं प्राप्त करता हूँ। फिर इसमें विभाग नहीं करता हूँ कि ये तो पर्याय हो गई, वो सबको जानने में आती है, वो तो पर्याय है, वो पर्याय को भिन्न कर लूँ और फिर मैं दृष्टि के विषय को लूँ, तभी मेरे को दृष्टि का विषय वो आत्मा का अनुभव होगा, निर्विकल्पना होगा, ऐसा कुछ उसमें नहीं दिया है। अभी अभी रात को अपन चर्चा करेंगे, अभी 5 मिनट में मेरा पूरा शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति है, ये सब दृष्टि का विषय दृष्टि में लेना वो भी शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति है, और अपने आत्मा को अभेदपण अनुभवना वो भी शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति है। ये दोनों निश्चय की बात है, एक निश्चय की बात है और दूसरी व्यवहार की बात है, ऐसा नहीं मुझे को प्रश्न आएगा कि ये दोनों जो बात है तो दोनों नित्य है या व्यवहार है कि नहीं, ये भी नित्य की बात है, वो व्यवहार की बात नहीं है। जैसे दो मोक्ष मार्ग है ऐसे ये दो जो प्रकार बताए आत्मधर्म की प्राप्ति के विधि के, वो दोनों नित्य की बात है, उसमें वो व्यवहार की बात नहीं है। एक ये है, एक ये थोड़ा बता रहा था, कोई टाइम नहीं है अपने पास। 340 नंबर का बोल, अज्ञानी का और ज्ञान ज्ञानी ना इंद्रिय ज्ञान मा कैसे करो। अभी जो इंद्रिय ज्ञान जो प्रवृत्ति अपन चल रही है वो अज्ञानी की चल रही है, मगर ज्ञानी होने के बाद भी उसका जो ज्ञान है अभी वो अज्ञानी ज्ञान बढ़ रहा है। क्यों? जो भी जानने में आता है, ये जानने में आता है तो ये मेरा है, इस प्रकार का ज्ञान अज्ञान रूप प्रवृत्त हो जाता है। वो इंद्रिय ज्ञान से मेरा जानने का स्वभाव है, इस प्रकार का उसको श्रद्धा नहीं है तो अज्ञानी है। अभी ज्ञानी को पता चल गया कि मैं तो ज्ञान स्वभाव ही आत्मा हूँ, वो अतिद्री ज्ञान से जानना वो ज्ञान का मेरा स्वभाव है, इस प्रकार से ज्ञानी का ज्ञान प्रकट हो गया, इससे वो सम्यक ज्ञान हो गया, इसलिए उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। फिर भी वो ज्ञानी के ज्ञान में ये दो प्रकार के भाग पड़ जाते हैं। जब भी वो आत्मद्रव्य को स्वसंवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को अनुभव करता है तब ये अतिद्री ज्ञान की धारा प्रकट होगी, जो अपने आत्मा को स्वसंवेदन रूप से जानने में जो अनुभव करती है, ध्यान की रहती है, वो फिर उपयोगात्मक हो या परिणति रूप हो, फिर भी वो हरेक समय में निरंतर धारावाही साधक की परिणति चल रही है। फिर भी उनके पास भी इंद्रिय ज्ञान तो है, जब वो पर के सन्मुखों के जब गुरुदेव अपने आत्मा को ध्यान में अनुभव करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान उपयोगात्मक पड़ गए, तो उपयोग उसमें नहीं दिखता और बाहर गया तो समय सार में क्या लिखा है, प्रवचन सार में क्या लिखा है, इस प्रकार से वो पर को जानने को उपयोग गया तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया। तो इंद्रिय ज्ञान जो खड़ा हो गया तो इंद्रिय ज्ञान भी है, अज्ञान क्या इंद्रिय ज्ञान है, वैज्ञानिक का इंद्रिय ज्ञान है, तो उसमें कुछ फेर है कि नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो इसका सब जवाब है सब पूज्य गुरुदेव सिंह ने बता दिया। देखो पहली पंक्ति में सब समाधान कर दिया है, बाहर नु जानवानी अपेक्षा ये बंदे नु ज्ञान सरकू है, वो इंद्रिय ज्ञान जैसा अज्ञानी का ज्ञान है उसके सम्मुख होके उसका लक्ष्य करके स्व का स्व से विमुख होके वो जानने को जाता है, तब जो इंद्रिय ज्ञान जो अज्ञानी को खड़ा होता है, मगर उसमें साथ में क्या होता है कि ये मेरा स्वभाव ऐसा उसको ज्ञान होता है, इस प्रकार से जानना ये मेरा स्वभाव है, जब मैं ज्ञाता हूँ ये सब मेरे गये किससे कैसे गये के चक्षु के माध्यम से मैं जानता हूँ, ये कर्ण से माध्यम में मैं जानता हूँ, ये जीवा के माध्यम से जानता हूँ, स्पर्श के माध्यम से जानता हूँ, ये इस प्रकार का मेरा जानने का स्वभाव है। इस प्रकार से जो ज्ञान के स्वभाव को जानता था अभी उस प्रकार के ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानता है, मगर जैसा वास्तविक स्वभाव है वैसा जानता है, और मेरा वो कुछ भी ये मेरे ज्ञान में नहीं आता है, राग भले परिणाम रहा है मगर ज्ञान मेरे वो राग मेरे ज्ञान में नहीं आता है, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही रहता हूँ, राग से मैं तथा भी नहीं रहता हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान प्रकट हो गया वेदनान की परिणति पूर्वक जो अपना स्वसंवेदन ज्ञान होके जो शुद्ध परिणति प्रकट हो गई, तो वो जो ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान के जाते होने पर भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं उसमें खड़ा होता है, फिर भी उसके साथ में उसके ज्ञान के दो भेद पड़ गए, वो थोड़ा अतिद्री ज्ञान की परिणति भी चलती है और इंद्रिय ज्ञान भी चलता है, तो मगर वो ज्ञानी है वो इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान मानते ही है, अज्ञानी तो इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान का स्वभाव मान लेते हैं, मगर ज्ञानी इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानते हैं, इसलिए भले उसकी परिणति होए परिणमन होए परिणमन चालू रहे हो, मगर मेरा तो अतिद्री ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है, वो अतिद्री ज्ञान से सबको जानना ऐसा मेरा स्वभाव है, इस प्रकार की उसको श्रद्धा चालू रहती है, तो वो एक ज्ञान धारा है। जैसे वो साधक होने के बाद में साधकपना और बाधकपना दो धारा चलती है, ज्ञान धारा और कर्म धारा, और ज्ञान धारा है वो मोक्ष मार्ग को साधती है और कर्म धारा है वो मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकती है, वो संसार का कारण देती है, भले दोनों साथ में चलती है। जैसे चारित्र की पर्याय में दो भाग पड़ जाते हैं, चारित्र की पर्याय का एक भाग जो है वो अपने आत्मा को अनुभव करके उसमें लीन होकर विकराग भाव रूप से करना मिल रहा है, और उसमें की पर्याय में विशेष में एक राग भाव का भी परिणाम चल रहा है, इस प्रकार से चारित्र की पर्याय में दो भाग पड़ जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में दो भाग पड़ जाते हैं, ज्ञान की पर्यायी बात तो एक ही होने पर भी उसमें दो भाग पड़ जाते हैं। एक अपने आत्मा को जो स्वसंवेदन ज्ञान से धारावाहिक जान रहा है, अनुभव कर रहा है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान की परिणति है, अतीन्द्रिय ज्ञान का परिणाम है। और उसी काल में जो ज्ञान पर गए किसन में हो गए जो जानने का काम कर रही है, एक एक गेय को खंड खंड रूप से जानने में काम कर रही है। जब ये 306 नंबर का बोल चलता है, तभी 307 नंबर का बोल नहीं उसको ख्याल में आएगा। ये समय सा चलता है तो प्रवचन सा नहीं ख्याल में आएगा। तो वो गेय से ज्ञान दबती है, वो परसत्तावलंबी ज्ञान है, वो परसत्तावलंबी ज्ञान है, वो मोक्ष मार्ग को नहीं करता है, वो बंध का कारण है। ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं, बंध का कारण वो किसी पंडित को ऐसा लगेगा तो ज्ञान का ज्ञान से कोई बंध नहीं होता है, वो बात इधर से नहीं करनी है। वो राखी बंध का कारण है, मोही बंध का कारण, वो सब गुरुदेव को पता है। वो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान, परसत्ता में भी ज्ञान बंध का कारण है, जो ये बता रहे हैं। तब वो गेय में अटक जाता है, ज्ञान उस गेय में अटक जाता है। ज्ञान का जो मुक्त स्वभाव है, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को जान के सबको सहज पड़े जान लेना, ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, उससे वो च्यूज होके एक गेय में जो अटक जाता है वो परसत्तावलंबी ज्ञान है। वो परसत्तावलंबी ज्ञान जो है वो अपना स्वभाव नहीं है, वो बंध का कारण हो गया। उस गेय में अटकने का वो उस गेय में बंध गया, इसलिए वो बंध का कारण है। उसके साथ में अविनाभावी चारित्र के मोह परिणाम उत्पन्न होते जाते हैं। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसके साथ में क्या होता है कि श्रद्धा ज्ञान श्रद्धा की चारित्र की सुख की वीर्य की सब पर्याय उसके साथ में काम करती है। वो ज्ञान धारा है, मोक्ष मार्ग को साधती है। और ये जो ज्ञान होता है वो मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता है, वो परसत्ता में ज्ञान बंद का कारण रहता है। ऐसा वो दो के बीच में वो भेद उसको चलता ही रहता है। जिति इंद्रियो ज्ञान स्वभाव अधिक ज्ञान आत्मने, वो जभी जभी एक राग से भिन्नता की बात होवे तो भाव कर्म है, तो कर्म के परिणाम है। कर्म से भिन्नता की जब बात आवे तो सब साथ में लेना, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, वो सब एक के साथ में डाल दिया, उसके भेद देती है, उससे अपना आत्मा भिन्न है, इस प्रकार से उसको जानना। ऐसे इंद्रिय की बात कभी भी किधर भी चले तो ये द्रव्यंद्रिय मेरा स्वभाव नहीं है, मगर जानना मेरा स्वभाव है। किसके द्वारा? कृपावेंद्रीय द्वारा। ये ऐसा नहीं है, उसके बीच में भेदना नहीं करना है। ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान है अभी अपने पास प्रकट, वो अपना स्वभाव है, वो द्रव्यंद्रिय और उसके विषय है वो मेरे से भिन्न है। उधर प्रज्ञा से नहीं जानना है, उधर भेदना नहीं करना है। तो ऐसा भेदना करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, मगर प्रज्ञा के लिए किधर डालना है, किधर भेद करना है कि अपने ज्ञान स्वभाव इंद्रिय ज्ञान स्वभाव जो अपना है, जय स्थिति इंद्रियो ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा ने, ज्ञान स्वभाव आत्मा जो कैसा है, ऐसा अखंड करें अतिथि ज्ञान जो स्वभाव आत्मा है उसको उससे भिन्न जाने, माने वो द्रवेंद्री को, भावेंद्री को और उसके विषय को। जब इंद्रिय की बात आवे तो तीनों भेद उसमें ले लेना, एक को भेद करना और एक को अभेद करना, ऐसा बात उसमें नहीं आती है। वो ज्ञानी की इंद्रिय ज्ञान हो तो भी ज्ञानी ऐसा ही जानते हैं कि भावेंद्री है वो इंद्रिय का परिणाम है, इंद्रिय है वो गेय है, और वो गेय है और अपना ज्ञायक है, वो दो के बीच में वो संकट भेद नहीं, वो संकट दोष नहीं करते, एकत्र तो नहीं करता है, वो भी नहीं रखता है। इस प्रकार से दो के बीच में भेद वो करता ही रहता है, इसलिए वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो ज्ञान है, इस प्रकार का उसका ज्ञान बना है, उसकी श्रद्धा है और उसका उसमें वर्णमन करता रहता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ता जाता है और इंद्रिय ज्ञान घटता जाता है। इंद्रिय ज्ञान का वर्णमन है वो ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का श्रद्धा के बल से वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो वृद्धि होकर वो पूर्ण हो जाता है और अतीन्द्रिय ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान की बात है।